ओम 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 आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित वेदांत डिंडिमह नामक स्तोत्र के आधार पर वेदांत विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 15वां श्लोक होगा। स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो जीवो ब्रह्मात्मना स्थितम् इति संपश्यतां मुक्ति रीति वेदांत डिंडिमः जीवो ब्रह्मात्मना गीयो गेयं जीवात्मना परम् मुक्तिस्तस्तेक्य विज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः सर्वात्मनः परम श्रोतु सर्वात्मना परम ब्रह्म श्रोतुरात्मा तया स्थितम् नायासस्तत्त्व विज्ञप्तो इति वेदांत डिंडिमः ऐहिकं चामस्मिकं च तापान्तं कर्मसंचयम् त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम् इति वेदांत डिंडिमः। तो विचार चल रहा है, मुक्त होना चाहते हो क्रिया वृथा है, मुक्त होना चाहने वाले मुमुक्षु को कर्म करना बेकार है। दूसरी बात कहा, मुक्त होना चाहने वाले मुमुक्षु को संसार में किसी के सामने आलाप करने की जरूरत नहीं है। आलाप शब्द का रोना बिलखना अर्थ होता है। तो मुक्त होना चाहने वाले को संसार में रोना चिल्लाना बेकार है। आलाप शब्द का दूसरा अर्थ भी कर लेते हैं, शिकवा शिकायत। तुम यदि मुक्त होना चाहते हो तो फिर संसार में किसी के प्रति किसी की कोई शिकायत मत करो। शिकायत क्यों करना भाई? तुम्हें पसंद नहीं है तो छोड़ दो, शिकायत क्यों करना है? तुम्हें अनुकूल नहीं है तो छोड़ दो, शिकायत क्यों करना है भाई? तो तुम मुक्त भी होना चाहते हो और छोड़ना भी नहीं चाहते हो, इसीलिए शिकायत करते रहते हो। इसीलिए किसी कवि ने कहा, आ गई थी शिकायत लबों पे, मगर करते किससे, शिकायत उसी से करनी चाहिए कि जिस पर कोई भी कंप्लेन न हो, कोई कमी कमजोरी न हो, या शिकायत उसी से करनी चाहिए जो कभी किसी के प्रति शिकायत न करता हो, है ना? बात समझ में आ रही हो कि नहीं? मान लो मैं गिरीश भाई से प्रेमपुरी आश्रम के बारे में शिकायत करता हूं, है ना? कि यहां ये व्यवस्था कमी है, यहां ऐसा है, वहां वैसा है, यहां वैसा है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, शिकायत में यही सब बात आती है ना? गिरीश भाई से शिकायत करना तभी संभव है कि गिरीश भाई मेरी कोई शिकायत न करते हो, और गिरीश भाई भी मेरी शिकायत करेंगे, स्वामी जी ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वो शिकायत करने तैयार है, मैं शिकायत करने तैयार हूं, तुम शिकायत करने तैयार हो, बहू सास की शिकायत करने को तैयार पड़ी है और सास बहू की शिकायत करने तैयार पड़ी है, किसको शिकायत सुनाओगे? सभी के जीवन में, हृदय में शिकायतों का भरमार है, हैं? किससे शिकायत करोगे? जिसके पास कोई शिकायत नहीं उससे करना तो ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि भगवान से शिकायत करें महाराज, तो भगवान से शिकवा किस बात को लेकर है? तो तुम कह सकते हो उसकी सृष्टि सभी समान होनी चाहिए, तो वह पक्षपात करता है, किसी को इतना धन दे दिया है और किसी को शाम की रोटी नहीं दे रहा है, है ना? शिकायत तो है ना? तो ईश्वर भी तुमसे शिकायत करता है, उसको इतना सब कुछ मैंने दिया, हाथ दी, मन दिया, प्राण दिया, जीवन दिया, आंख दी, कान दी, सब कुछ दिया, एक बार हे प्रभु तुमने बहुत कुछ दिया, तुम्हें धन्यवाद है भी नहीं कहता है, तो वो भी शिकायत करने के लिए राजी है, वो तैयार है बेटा, तो क्या करोगे उसकी शिकायत? तो शायद किसी कवि ने कहा, आ गई थी शिकायत लबों पे, मन से निकलकर ओठों तक आ गई थी, लेकिन करते किससे? शिकायत करने के लिए सुनने लायक कोई व्यक्ति हो तो उससे करें, तो करना बेकार था। ऐसे होता है, हमारे पास आते हैं भक्त लोग, अपनी रोनी रोते हैं, यूं नहीं, त्यों नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, रोते हैं। रोने के बाद हम कहते हैं, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, क्या फायदा हुआ बोलो, है? एक घंटा रोने से फायदा क्या हुआ, उपलब्धि क्या हुई, समाधान कोई हुआ? ये तो तुम्हारा भाग्य है, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, है? या कहेंगे ये संसार ऐसा ही चलता है, ये संसार का धर्म है, मिला क्या? शिकायत करने की फायदा, उपलब्धि क्या हुई बोलो? तुम भी यही कहोगे, हम भी यही कहेंगे। समाधान संभव ही नहीं है। जगत का समाधान तो ये एक ही है।
क्या?
हाँ, त्यक्त्वा ऐक्यम ब्रह्म विज्ञानम, सभी शिकवा का परित्याग करो और एकमात्र ब्रह्म को जानो, तो वही एक समाधान है, बाकी और समाधान नहीं है। वृथावादान मनोरथान, इस सब का परित्याग करो। इति वेदांत डिंडिवा, 14वें श्लोक की व्याख्या। इसी बात को 15वें श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी कह रहे हैं। स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो ब्रह्म जीवात्मना स्थितम् इति संपश्यताम् मुक्ति इति वेदांत डिंडिमः। जीव, जिसको हम जीव कह रहे हैं, कार्य उपाधि वाला चैतन्य जीव। वेदांत में जीव शब्द की परिभाषा यही किया है, कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर। कार्य कारण उपाधि रहित ब्रह्म, ये तीन चीज स्पष्ट होना चाहिए। कार्य उपाधि वाला चैतन्य, उसकी जीव संज्ञा है, यानी जीव नाम पड़ा है उसका। कारणोपाधि जो चैतन्य है, उसकी ईश्वर संज्ञा है, उसका ईश्वर नाम पड़ा है। कार्य और कारण दोनों से रहित जो चैतन्य है, उसकी ब्रह्म संज्ञा है, यानी उसका नाम ब्रह्म रखा गया है, या उसी को परमात्मा कहते हैं। ये जिसको जीव जीव कह रहे हो, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि धर्म से युक्त चैतन्य, यही ना है। सुखी कौन है? जीव ही तो सुखी है। दुखी कौन है? तो जीव ही तो दुखी है। कर्ता कौन है? तो जीव ही करता है। भोक्ता कौन है? तो जीव ही भोक्ता है। तो अंतकरण उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, कार्य शब्द से अंतकरण या कार्य शब्द से समग्र तीन कोष, कार्य शब्द से क्या लोगे? तीन कोष, प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म शरीर आ जाता है, उसके अंदर अंतकरण भी है। जीव आभास होने के लिए अंतकरण है, कर्ता बनने के लिए करण इंद्रियादि हैं, भोक्ता बनने के लिए प्राणादि हैं। प्राण को लेकर वो भोक्ता बनता है, इंद्रियों को लेकर वो कर्ता बनता है, अंतकरण को लेकर वह आभास चैतन्य बनता है। समग्र रूप में इनको मिलाकर एक उसकी जीव संज्ञा पड़ गई, नाम पड़ गया, कर्ता और भोक्ता सुखी दुखी वही है। बुद्धि को लेकर वह ज्ञाता बन गया है, मन को लेकर सुखी दुखी हो गया है, आदि धर्मों से युक्त जो जीव है। वेदांत जिसको बार बार जीवात्मा जीवात्मा शब्द से कहते, वो जीवात्मा मूल रूप में है क्या? असली रूप में वो है क्या? ब्रह्मात्मना स्थितः, स्वरूप से तो वह ब्रह्म ही है। जिसको हम जीव कह रहे हैं वह जीव ब्रह्मात्मना स्थितः। ब्रह्म जीवात्मना स्थितम, ठीक इसका अनुलोम व्यलोम, या अनुलोम विलोम है ये, है समझे कि नहीं। जीव ब्रह्मात्मना स्थितम, ब्रह्म जीवात्मना स्थितम। ब्रह्म ही जीव रूप में प्रतीत हो रहा है, ध्यान दो, ब्रह्म ही जीव रूप में प्रतीत हो रहा है और जीव ही ब्रह्म रूप में स्थित है ना? क्या समझ रहे हैं? ब्रह्म ही जीव रूप में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रतीत हुआ हुआ वह बाधित होता है। आप लोग अभी तक वेदांत सुनी रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो। प्रतीत माने प्रातिभाषिक, प्रतीत माने प्रतीत मात्र होना, और जो प्रतीत मात्र होता है प्रातिभाषिक है, वो तो मिथ्या है, वो तो सत्य हो ही नहीं सकता है। तो जीव यदि जीव के रूप में प्रतीत हो रहा हो तो वह बाधित होने वाला यानी मिथ्या होने के कारण, तो अबाधित सत्य रूप में क्या है उसका स्वरूप, तो बोले ब्रह्म। जीव ब्रह्मात्मना स्थितम, जीवात्मना अस्थितम, ब्रह्मात्मना स्थितम। जीव ब्रह्म के रूप में तो वह स्थायी है, स्थायी माने सत्य है, समझे कि नहीं। स्थितम माने स्थायी, स्थायी माने सत्य, त्रैकालावाद्यत्वम सत्यत्वम। जीव को ब्रह्म के रूप में तो कभी बाद नहीं कर सकते, लेकिन जीव ब्रह्म जीव के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह प्रतीयमान जीवत्व बाधित होता है। अज्ञान अवस्था में प्रतीत हो रहा है, उपाधि की अवस्था में तो प्रतीत होता है, ज्ञान अवस्था में वो प्रतीत न होने के कारण बाधित होता है। जो बाधित होता है वो स्थिति नहीं होती, वो उसका स्थित नहीं है, समझे नहीं। यदि यह पेड़ जहां खड़ा है वह यदि कभी न कभी उखड़ जाता हो तो उसको ये नहीं कहोगे कि वो पेड़ वहां स्थिर है, नहीं कहोगे। दो दिन के लिए उसकी स्थिति को लेकर तुम क्या उसके अनादि अनंत अबाधित कह सकते हो? नहीं, उसके जड़े कमजोर होंगे, आधी बहरी आएगी तो उखड़ जाएगा, तो वो वहां स्थित नहीं है, स्वरूप से स्थित नहीं है, लेकिन वो पेड़ मिट्टी के रूप में स्थित है। क्योंकि कोई भी आधी बहरी जो भी आ जाए पेड़ को मिट्टी होने से तो बचाएगा नहीं ना, रोकेगा नहीं ना कोई, मिट्टी ही पेड़ बना है, है? धरती की जो मिट्टी है वही वृक्ष के रूप में खड़ा है, तो मिट्टी रूप में तो वह वृक्ष स्थिर है, उसको कोई कभी बाद ही नहीं कर सकते। आग लगा दो तो भी राख के रूप में बाद नहीं कर सकते, पानी से गल जाए तो भी वह मिट्टी के रूप में बाद नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। तो उस रूप में तो स्थित है, और यदि वह मिट्टी वृक्ष के रूप में कल्पना करो वह वृक्ष के रूप में अस्थिर है। तो ये शब्दों का यही अर्थ है यहां समझना। स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो, जीव ब्रह्मात्मना स्थिता। तो हम यदि अभी अपने आप को जीव के रूप में अनुभव कर रहे हैं और मान रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी जीवत्व स्थिर नहीं है। लेकिन तुम्हारी जो ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्मपना है, वो स्थिर है। उस स्वरूप में कोई विकार नहीं आने वाला है, परिणाम नहीं आने वाला है। और ब्रह्म जीवात्मा ना स्थित है, तो ये विवर्तवाद की दृष्टि से इस दो वाक्यों का विचार करना पड़ता है। जगत वेदांत विवर्तवाद मानता है, आप समझे ना, जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत किसका विवर्त है? ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त तो आप लोग समझते हो, इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हो, सर्प डोरी रस्सी का विवर्त है। सर्प क्या है? रस्सी का विवर्त है। इसी तरह जगत ब्रह्म का विवर्त है। तो जीव क्या है महाराज? जीव ब्रह्म का विवर्त होने के कारण विवर्तित पदार्थ विपरीतत्वेन वर्तमानम विवर्तम, माने विपरीत, अधिष्ठान के ठीक विपरीत। जो अधिष्ठान है उस रूप में प्रतीत न होकर अधिष्ठान से विपरीत धर्म के रूप में प्रतीत होना, यही तो विवर्त का लक्षण है। तो नाधिष्ठानात भिन्नता रोपितस्य, शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में ये वाक्य कही है। आरोपितस्य वस्तुनः स्वरूपम अधिष्ठानात भिन्नम न, जिस अधिष्ठान में भ्रांति से जो वस्तु तुम आरोपित करते हो, वो आरोपित वस्तु अधिष्ठान के स्वरूप से भिन्न नहीं हो सकता। वही आया रज्जु सर्प, रज्जु अधिष्ठान में सर्प के आरोप करो, सर्प आरोपित है, तो आरोपित जो सर्प है वह अधिष्ठान की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला नहीं है। उस सर्प की क्या अस्तित्व है? बोलो क्या अस्तित्व है उस सर्प का? तुम यदि है कहते हो ना, तो वो है पना तो सर्प रस्सी से आया है। देखो युक्ति की बात कह रहा हूं, इसी का नाम है युक्ति। भ्रांति से यदि सामने तुम सर्प देखते हो, शब्द क्या प्रयोग करते हो? सामने सर्प है कह रहे हो ना, तो सामने सर्प है, ये है कहां से आया? सर्प में रस्सी से। अब ये है क्योंकि रोशनी आ जाने के बाद भी हटेगा नहीं, क्या नहीं हटेगा? है नहीं हटेगा, फिर क्या हटेगा रोशनी आने के बाद? सर्प हटेगा, हाय हटेगा, वो हाय कहां रहेगा? रस्सी है कहोगे नहीं? फिर वो हाय तो रस्सी की है, रस्सी है। अब क्या कह रहे हो? सर्प है। रोशनी आने के बाद गया क्या? सर्प गया, हाय गया, हाय तो झुकाती हूं। ये देख, अंधकार आने के बाद क्या हुआ? रस्सी तो ढक गया, समझे नहीं, रस्सी परोक्ष हो गया, रस्सी ढक गया माने रस्सी परोक्ष हो गए, आए ढका, आए परोक्ष नहीं हुआ है, आए तो अपरोक्ष ही है ना, आए तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा है ना। रस्सी परोक्ष हो गया लेकिन हो गई है ना, आए तो अपरोक्ष है। अब भ्रांति काल में सर्प प्रत्यक्ष हो गया है ना, रस्सी परोक्ष हो गया। रोशनी आने के बाद सर्प गायब हो जाएगा, रस्सी अपरोक्ष हो जाएगा। रस्सी अपरोक्ष होने पर भी हाय अपरोक्ष है, हाँ, रस्सी परोक्ष होते समय में भी हाय अपरोक्ष ही है, हाय तो दोनों अवस्था में अपरोक्ष है। इस समय क्या हो रहा है, जीव जीवत्व जीवपना क्या हो रहा है बोलो, जीव का परोक्ष है कि अपरोक्ष है, अभी अपरोक्ष है जीव। इस समय हमें क्या हो रहा है, अपरोक्ष है, कर्ता भोक्ता तो अपरोक्ष ही है ना, कर्ता भोक्ता की परोक्षता होती तो आप कर्ता भोक्ता के अनुभूति न कर पाते, मैं करता हूं मैं भोक्ता हूं नहीं कर पाते, ये भ्रांति की अवस्था है। और वो भ्रांति हट जाने के बाद जो अपरोक्ष जीव था वो बाधित होगा। इस समय ब्रह्म परोक्ष है, क्या परोक्ष है, इस समय अधिष्ठान यानी ब्रह्मा यानी परमात्मा क्या है, परोक्ष है। अनुभव में तो आ नहीं रहा है ना, अनुभव में ना आना ये क्या है, परोक्ष है। तो ये बाधित होने के बाद ब्रह्म अपरोक्ष होगा। तो जीव हूं, अहम जीवा, अहम जीवो अस्मि, अस्मि तो अभी भी है, मैं हूं, हूं पना तो अभी भी है। और ये जीवपना बाधित होने के बाद भी हूं पना तो रहेगा, तो कहां रहेगा वो, अहम ब्रह्मास्मि, अस्मिपना तो अभी भी है, तो अस्मिपना परोक्ष नहीं है, ब्रह्म परोक्ष है, अस्मिपना परोक्ष नहीं है, जीव अपरोक्ष है, अस्मिपना भी अपरोक्ष है। जीव बाधित हो जाएगा तो ब्रह्म अपरोक्ष हो जाएगा, अस्मिपना तो अपरोक्ष है ही है। तो यही सत्ता है, इसी का नाम सत्ता है। अस्मि ये पहले ब्रह्मात्मना स्थित था, अब भ्रांति काल में जीवात्मना स्थित हो गया। अभी भ्रांति काल में जीवात्मना स्थित जो अस्मि है वह स्वरूपतः ब्रह्मात्मना ही स्थित है, ये जीवो ब्रह्म बना पर स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो ब्रह्म जीवात्मना स्थिति। ब्रह्म ही विवर्त से जीव बना है, जीव स्वरूपतः ब्रह्म है। ये शब्द ध्यान देना, ब्रह्म ही विवर्त से जीव बना, जीव स्वरूपतः ब्रह्म है। स्थितम संपश्यतात्मा इति संपश्यताम मुक्ति ही। जब तक ये दृष्टि नहीं बनेगी तब तक मुक्ति संभव नहीं है। जब तक ये दृष्टि नहीं बनेगी, ब्रह्म ही विवर्तक के रूप में जीव के रूप में स्थित है, जीव अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म ही है, ये दृष्टि जब तक नहीं बनेगी जीवात्मा की मुक्ति नहीं होगी। इति वेदांत डिंडिमा। वही बात फिर और स्पष्ट कर रहे हैं, यहां सत्ता को लेकर व्याख्या की 15वें श्लोक में और 16वें श्लोक में चित्त को लेकर व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्रह्म के बारे में सच्चिदानंद शब्द प्रयोग करते हो ना, ब्रह्म में सत्ता है, ब्रह्म अतिरिक्त और किसी में भी सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं है का मतलब उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इस पुस्तक की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, समझे कि नहीं, इस पुस्तक की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये दूसरे की सत्ता में प्रतीत हो रहा है। किसकी सत्ता में? सामान्य दृष्टि से विचार करो तो कागज के सत्ता में, कागज के अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है दूसरे के सत्ता में, तो सामान्य दृष्टि विचार करो तो किसके सत्ता में? तो मिट्टी की सत्ता में, और मिट्टी की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है दूसरे के सत्ता में, मिट्टी प्रतीत है किसके सत्ता में? तो पानी की। वो आओ उपनिषद की उस प्रक्रिया को स्मरण करो, तस्माद् वा आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद वायु वायुरग्ने अग्ने अपा अभ्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधय औषधिभ्य पुरुष सवायेश पुरुषो नरसमया। अब ये क्रम से आओ, हर कार्य अपनी कारण की सत्ता में स्थित है। कपड़ा, ये कपड़ा अपनी सत्ता में स्थित है? कपड़े की अपनी सत्ता है? कपड़े की अपनी सत्ता नहीं है, दूसरे के सत्ता में स्थित है। किसकी सत्ता में? धागे की। एक एक धागा यहां से निकालना शुरू करो, कपड़े की सत्ता खत्म। क्या फिर भी आप सभी धागों को आड़े और टेढ़े जो रखे हैं धागे, उन धागों को निकाल के अलग अलग करके एक जगह ढेर करोगे तो भी ये कपड़ा है कहोगे कोई? इसका मतलब कपड़े की सत्ता गई। तो ये कपड़ा आज यदि दिख रहा है तो धागे की सत्ता में दिख रहा है, और धागे की सत्ता किसकी सत्ता में टिका हुआ है? अपनी स्वतंत्र सत्ता है धागे की, कपास के सत्ता में है। उस धागे में भी छोटे छोटे कपास के रेशे हैं, तीन चार बारीक बारीक रेशे एक आपस में मिलकर एक धागा बनाना है। उन में से छोटे 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 रेशे निकाल दोगे तो कपास के अस्तित्व तो ढेर के रूप में दिखेगा, धागे का अस्तित्व गायब। इसका मतलब आज कपास किसके अस्तित्व में टिका है? नहीं, धागा किसके अस्तित्व में टिका है? कपास। तो कपड़ा किसके अस्तित्व में टिका है? कपास के। ये पहले तुमने कहा था धागे के अस्तित्व में, अब क्या कहा? अब वो कपास मिट्टी मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, उदय खा जाए, हैं, दीमक खा जाए, तो क्या कहोगे? कपास नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मिट्टी है। आग लग गया तो क्या हुआ? राख हो गए। इसका मतलब कपास किसके सत्ता में टिका है? अपनी सत्ता में तो कपास थी नहीं, किसके सत्ता में? मिट्टी के सत्ता। तो दूसरे के सत्ता में टिका हुआ था। तो अब विचार करो, ये कपड़ा किसके सत्ता में टिका है? मिट्टी के सत्ता। तो इसको क्या कहोगे? मिट्टी कहोगे ना? सीधी सी बात है, ये वेदांत के यही तो विचार है। अब इसी तरह जीव को क्या कहोगे? जीव अपनी सत्ता में होता तब तो कोई समस्या थी नहीं, अपनी सत्ता में तो जीव टिका नहीं है। तो जीव की सत्ता मूल रूप में ब्रह्म की सत्ता है। तो जीव ब्रह्मात्मना स्थित, जीव आज जो स्थित है, यानी ये कपड़ा आज जो स्थित है, ये अब एग्जाम्पल दिए अनुसार तो मिट्टी सत्ता में स्थित है, और यदि इसी प्रक्रिया को आगे जाओगे तो ब्रह्म की सत्ता में ही टिका हुआ है। ब्रह्म की सत्ता के अलावा सत्ता और दूसरी की है ही नहीं, प्रतीत है लेकिन सत्ता उनकी नहीं है। किताब की प्रतीति है लेकिन किताब की अपनी सत्ता नहीं है, और दूसरे के सत्ता में प्रति, कपड़े की प्रतीति है लेकिन कपड़े अपनी सत्ता में नहीं है, दूसरे के सत्ता में कपड़ा प्रतीत हो रहा है। जीव की सत्ता अपनी सत्ता नहीं है, ब्रह्म की सत्ता में स्थित है। इति संपश्यताम मुक्ति, ये जब तक ये दृष्टि नहीं बनाओगे मुक्ति संभव नहीं है। इति वेदांत डिंडिमा, ये हो गया सत्ता को लेकर। अब चित्त को लेकर कह रहे हैं, जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो, ज्ञेयम् जीवात्मना परम, मुक्ति तदेक्य विज्ञानात्। जीव ब्रह्मात्मना ज्ञेय, जीव को ब्रह्म के ही रूप में निश्चय करना चाहिए, ब्रह्म से भिन्न के रूप में निश्चय न करो। कपड़े को कपास के रूप में ही निश्चय करना चाहिए, कपड़े को मिट्टी के रूप में ही निश्चय करना चाहिए, समझे नहीं? आभूषण को सोने के रूप में ही निश्चय करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दिया करता हूं, बहुत पहले लगभग 45 साल पहले की घटना है ये। कुरुक्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण था सायंकाल, तो हम भी ग्रहण नहाने के लिए चले गए थे कुरुक्षेत्र। तो एक बंबई से गुजराती भाई, वो भी ग्रहण नहाने के लिए कुरुक्षेत्र चले गए। संयोग के हम भी जहां बैठे थे तो वहीं वो भी आ गया, और अब पूछने लगा, महाराज ये ग्रहण की क्या महिमा है, क्या महत्व है, क्या है, इतने सब नहाने के लिए आ रहे हैं, यहां क्या करना चाहिए? तो हमने कहा ये सूर्य ग्रहण का है, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में नहानी चाहिए, चंद्र ग्रहण काशी में नहाना चाहिए, ये महत्व शास्त्र ने वर्णन किया है। बोले हमने भी यही सुना है कि कुरुक्षेत्र नहाना चाहिए, तो इसलिए हम आ गए। क्या करना चाहिए? करना तो बहुत कुछ है, हमने उसके उससे कहा, करना तो बहुत कुछ चाहिए। ग्रहण काल में कोई भी चीज खान पान नहीं करनी चाहिए, ग्रहण काल में निषिद्ध कर्म कोई भी चीज कोई भी कर्म नहीं करनी चाहिए, ग्रहण काल में शुद्ध सात्विक शास्त्र विहित कर्म करनी चाहिए, उसमें भी ग्रहण काल में अपनी इष्ट देव के गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। इस जप से मंत्र में शक्ति वृद्धि होती है, एनर्जी का आविर्भाव होता है, शक्ति वृद्धि। और यदि करना ही है तो सूर्य ग्रहण में सोने का दान करना चाहिए, ये महिमा है, और चंद्र ग्रहण में चांदी का। बोले अच्छा, पहले किसी ने कहा नहीं, नहीं तो हम ले आते, एक टुकड़ा ले आते बंबई से, अब तो यहां इस समय तो मिलेगा नहीं। तो हमने कहा, इस देखा उसके गले में चेन था सोने का। बोले सोना तो तुम्हारे पास है ना? बोले नहीं है महाराज, हम लाए नहीं है। तो मैंने उसको दिखाया गले में, ये क्या है? तो उसने कहा, महाराज ये तो चेन है, किसका है, किससे बना है, मिट्टी से, लोहे से? नहीं नहीं, सोने का है। सोने का चेन सोना नहीं होता है क्या? बोलो, सोने का चैन सोना नहीं होता है क्या? और तुम कैसे कह रहे हो कि सोना नहीं है मेरे पास? पहले पता चलता तो ले आते, और बिना पता के तुम लेके आ चुके हो, अब करो काम, उपयोग करो उसका। तो उसके मन में लगा कि इतना बड़ा एक तोले का होगा, कितना होगा? एक डेढ़ तोले का होगा। बोले इतना सब दे दे, ऐसा लगा होगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा देना। अरे निकाल ला। तो हमने एक कड़ी थी, चैन में जो कड़ी कड़ी होती है ना, एक कड़ी के झटका लगाया तो निकल गया, वो निकल गए। ले ले, तुम्हें छोटी छोटा थोड़ा चाहिए ना? कितना चाहिए? दो कड़ी निकालना या तीन कड़ी? जितना चाहे उतना निकाल ले। बोले इसके दान करने से सोने का दान हो जाएगा? बोलता है फिर लो बोलो। अब ये क्या है, निश्चय नहीं कर पा रहा है ना। जब हमने कह दिया कि हां सोना है, इसके कड़ी का दान करो, सोने का दान का महत्व तो हो गया। तो उसने वही संकल्प किया, दान कर दिया एक पंडित को। पंडित को दान कर दिया, संतुष्ट हुआ ना, तब मैं सोने का दान किया। मन में संतुष्टि हुई कि नहीं, संतुष्टि हुई कि नहीं, ये एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है। तो हार को यानी चैन को सोने के रूप में निश्चय नहीं करना, उसके लिए समस्या है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सोने के रूप में निश्चय कर रहे हैं। इसी तरह यहां क्या करना है? जीव को ब्रह्मात्मना ज्ञेय, ज्ञेयो जीवात्मना परम ब्रह्म, जीवात्मा में विवर्तित है और जीव ब्रह्मात्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। मुक्तिस्तद एक्यम। बोलो, सोना और चैन दोनों एक रूप में निश्चय करना चाहिए कि नहीं? चैन के नाम रूप कल्पना है, सोना किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है। चैन और जो चैन बता रहे हैं, जो रूप है कड़ी कड़ी, वो तो सोनार की कल्पना है कि नहीं? बोलो, उसकी बुद्धि की कल्पना है। लेकिन क्या सोना सोनार की कल्पना है? चैन सोनार की सृष्टि है, लेकिन सोना सोनार की सृष्टि नहीं है। जीव तुम्हारी अपनी कल्पना है, तुम्हारी भ्रांति से जीवत्ता है, लेकिन ब्रह्म तुम्हारी कल्पना नहीं, निश्चय है, वो तो है ही है। जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेय है, ज्ञेयम् जीवात्मना परम मुक्तिस्तद ऐक्य विज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः। सर्वात्मना परम ब्रह्म श्रोतुरात्मतया स्थितम् नायासस्तत्व विज्ञप्तौ इति वेदांत डिंडिमः। वेदांत समझ में बहुत कठिन है महाराज, लोग कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कोई कठिन नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई क्यों नहीं महाराज? क्योंकि यहां करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ नहीं है, बनाना कुछ नहीं है और बिगाड़ना कुछ नहीं है। बोलो, यहां बनाना कुछ नहीं, बिगाड़ना कुछ नहीं है। आम बिगाड़े बिना आम रस बनेगा? आम रस बनाना है तो आम को बिगाड़ना पड़ेगा, है? आम रस भी, आम भी बना रहे ज्यों का त्यों आम रस भी बन जाए, ये संभव नहीं। एक को बिगाड़ो, दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ, एक को बिगाड़ो, ये देख लो। और यहां फिर वेदांत में बनाना बिगाड़ना नहीं है। क्या है फिर महाराज? ब्रह्म परम ब्रह्म सर्वात्मना स्थितम, वो ब्रह्मा सभी के आत्मा के रूप में स्थित है, अवस्थित है। तब सभी के आत्मा के रूप में स्थित है तो श्रोतुर आत्मतया भी स्थितम है, सभी के आत्मा के रूप में स्थित है तो यह ब्रह्म तुम्हारी आत्मा के रूप में भी स्थित है कि नहीं? तुम सभी से बाहर तो है ही नहीं हो। ब्रह्म सर्वात्मना स्थितम, लोग कह देते हैं भाई बड़े आसान से, परमात्मा सर्वव्यापी है कह देते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी में परमात्मा है। अरे सर्वव्यापी है, सभी में परमात्मा है तो वह परमात्मा तुम में है कि नहीं? मुझ में परमात्मा है वो मूर्ख नहीं कहता है। फिर क्या कहता है? वो क्या कहता है? सब में परमात्मा है ये तो कहता है। गुरु ये कह रहे हैं कि सभी में परमात्मा देखो कह रहे हैं। अरे भाई सभी में परमात्मा देखो कह रहे हैं तो तू अपने में परमात्मा देख रहा है कि नहीं? और में तो देख चाहे न देख कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा वेदांत क्या कहता है? और में परमात्मा देख चाहे न देख उससे तेरे को कुछ बनना नहीं बिगड़ना नहीं है। अपने में परमात्मा की दृष्टि तो करनी ही चाहिए, और जब तक अपने में परमात्मा दृष्टि नहीं करेगा उस समय परमात्मा दृष्टि कैसे करेगा बोलो? हैं? सब में परमात्मा दृष्टि करना और अपने अपने दास दृष्टि करना, ये कहां का विडंबना है? कहां का नियम है? क्या तुमसे अलग हो जाएगा परमात्मा? सब में रहने वाला परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा? हैं? सभी की आत्मा के रूप में अवस्थित जो परमात्मा है क्या तुमको छोड़ेगा? वो तुम्हारी भी तो आत्मा के रूप में अवस्थित है। अब अपने आप को आत्मा के रूप में निश्चय करना क्या आयास करना है भाई? क्या परिश्रम करना है? कुछ भी नहीं है, है? इसलिए ना आयासम तत्व विज्ञप्तो ना आयासम, यहां तो कोई परिश्रम ही नहीं, कोई कठिनाई ही नहीं है, है? बड़ा विचित्र है वो। मुर्गे के शरीर में मांस देखने वाला अपने शरीर में मांस नहीं देख रहा है, देखता है मुर्गा खाने वाला है? मुर्गे के शरीर में क्या देख रहा है? मांस देख रहा है ना, मटन देख रहा है ना, चिकन देख रहा है ना। मुर्गे के शरीर में मांस देखने वाला मांसाहारी ही अपने शरीर में मांस देख रहा है बोलो? क्या विडंबना है भाई? सर्वात्मना परम ब्रह्म श्रोतुरात्मतया स्थितम नायासस्तत्व विज्ञप्तौ इति वेदांत गिंडिमा। निश्चय करने में क्या परिश्रम है बोलो? न खर्च करना है, न पसीना बगाना है, न खून बगाना है। कहते हो न खून पसीना ये करके कमाया है, ऐसे बर्बाद कर देना है पैसा, ऐसे आता है पैसा, खून पसीना ये करके कमाया है ये। कहते हो कि नहीं? जब बेटा फजूल खर्च करता है तो है? यहां खून पसीना ये करना है क्या? ना आया बैठे बैठे हम ब्रह्मास्मि करो, कौन तुम्हें है अन्यथा कर सकेगा बोलो? नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।